दूसरे में कोई चिंता में फरोख करने का हक रखता है। ये एक नई बात नहीं है, अफ्रीका में अभी भी हो रहा है, बरसों से हो रहा है। और तीसरी अहम बात यह है कि यहां वो चीजें काश्त की जाती हैं जो अक्सर मुकामी मुल्क की जरूरत भी नहीं होती। यानी सबसे बड़ा इनका एक ये होता है कि जो मुकामी मुल्क की जमीन होती है उसमें जो चीजें जरूरत नहीं होती उस मुल्क को, ये वो चीजें काश्त नहीं करते, चीजें दूसरी काश्त करते हैं। फिर उस फसल का म्यार वो होता है जो उनके अपने मुल्क या जहां ये फसल एक्सपोर्ट होगी उनके गजाई म्यार के मुताबिक होगा। यानी अगर उसने मुकामी मंडी के लिए कुछ दरखास्त की भी जाए तो उसके दाम वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के मुताबिक गैर मुल्की करेंसी में वसूल किए जाएंगे। गोया अवाम की दस्तरस से बाहर इनकी कीमत होगी। यहां ये सोचने की जरूरत है कि हमारी जमीन पर जदीद फार्मूलों के तहत काश्तकारी का जो महंगा पैटर्न इस्तेमाल होगा वो दिन ब दिन हमारी जमीन की पैदावारी सलाहित को बदतरीन इस कदर कमजोर कर देगा। ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कल कला जब तक ये लीज का वादा खत्म होगा ये जमीन हमारे लिए दर्द सर बनकर रह जाएगी और हम वैसे ही महंगे जदीद फार्मूले काश्त के मुतामिल नहीं हो सकते जो ये आने वाली कंपनियां करेंगी। हमने इस पर तो गौर ही नहीं किया कि जहां काश्तकार बेदखल हो जाएंगे वहां मुकामी जमींदार भी बेदखल हो जाएंगे। यानी इस तरीकाकार से हमारी जमींदारों की पूरी नजर गायब कर दी जाएगी और इनकी जगह ये कंपनीज आ जाएंगी जिसमें पार्ट ऑनर फौज है हमारी और ये गैर मुल्की कंपनियां होंगी। अब ये समझने की भी जरूरत है कि इतना सरसल खुशनुमा मंजरनामा नहीं है जितना कि टीवी बताकर अवाम का दिल खुश किया जा रहा है कि जी सऊदी अरब इतने बिलियन सर्व कर रहा है ला रहा है और यूएई ला रहा है बहरीन ला रहा है कतर ला रहा है। ये ऐसा सरसल मामला नहीं है मतलब है। यानी जब मैंने इस सारे मामले की तहकीक शुरू की मैं बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझसे ये सवाल किया तो हकायक जब मेरे सामने आए तो यकीन कीजिए मैं लर्ज कर गया। मैं चंद एक दो चीजें आपके सामने रख देता हूं आप भी सुनिएगा कि मुझे यानी मुझे मुस्तकबिल में इस कॉर्पोरेट फार्मिंग की कामयाबी के बाद के मनाजर बहुत खौफनाक दिखाई दे रहे हैं। यानी बड़ी तेजी से इस मुल्क के करेक्टर बदलने की कोशिशें हो रही हैं। हमारी ब्राय नाम जो सियासी माशी खुद मुख्तारी बाकी है वो भी ग्रेजुअली खत्म हो जाएगी और हम जल्द सदर अफ्रीकी मुल्कों की तरह हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि सदर अफ्रीका में जहां कंपनी का सिर्फ जनरल मैनेजर मालिक की बात नहीं कर रहा जनरल मैनेजर यह तय करेगा कि आइंदा मुल्क का सदर कौन होगा वजीर अजम कौन बनेगा स्पीकर कौन होगा सेनेट का चेयरमैन कौन होगा। यानी बाकी मुल्की उद्योग की करेंगे तो शायद असिस्टेंट मैनेजर की मंजूरी से होगी। फिर मैं ये भी हकीकत बयान कर दूं कि जो इस वक्त सदर अफ्रीका में हो रहा है आप खुद देख लें आज आप गूगल करके देख लें वैसे आप दुनिया बहुत वसी है आप फौरन तो देख लें जो मैं आपको बातें बता रहा हूं। यानी गोया ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा होल्ड होगा इनका। मैं अफ्रीका के इन माल का जिक्र कर रहा हूं जहां सोने डायमंड दीगर कीमती धातु के कानों पर इन गैर मुल्की यूरोपीय कंपनी का कब्जा है बल्कि ऐसे इमारतों के जरिए वो इनके मालिक बन चुके हैं। यानी इन मादों के बाद शिद्दत से ये महसूस ही नहीं बल्कि यकीन हो रहा है कि अब हम इस लेवल पर जा रहे हैं जहां मुकामी लोकल मैनेजर वादे के तहत इस मुल्क के सदर की तकर्री करता है। वैसे भी अब तो मौजूदा सिनेरियो तो ये है अब आपको पता चल गया हो कि अब दो घराने ये तय करते हैं जी अब अगला वजीर अजम कौन होगा और मियां शरीफ बरादरान और जरदारी बरादरान मुझे ये तय करेंगे अगला वजीर हमारा होगा तुम्हारा कौन क्या क्या होगा ये तो चाहते हैं। यानी बर्दे के पीछे ये कुछ हो रहा है भाई कि सदारत किसके पास होगी और सब्जी और सैंड में किन अफराद को भेजा जाएगा। अब आप ये सोचिए कि हमें तो ये करप्ट अफराद ही कबूल नहीं लेकिन जब कोई गैर मुल्की टेलीकॉम कंपनी बेरेज कंपनी या कॉर्पोरेट कंपनी का गैर मुल्की मैनेजर कौम की किस्मत के फैसले सादर करेंगे तो फिर हम कहां खड़े होंगे। ये है वो खौफनाक सीनारियो जो हमारे ऊपर मुसलत होने की तैयारी कर रहा है जहां न सिर्फ तशवीशनाक गजाई इजलास की किल्लत होगी बल्कि हमारे मौजूदा खुद मुख्तारी और कल्चर के प्रखच्चे उड़ा दिए जाएंगे बल्कि ऐसी बेरोजगारी भी पैदा हो जाएगी जहां अफ्रीका के मुल्कों की तरह अमनोमान का ना थमने वाला माहौल भी पैदा हो जाएगा। यकीनन जब घर में भूख से बच्चे तड़प रहे होंगे इलाज मुआवजे के लिए अद्वियात खरीदने की इस्तात ना होगी तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा तो अगला मंजर आप खुद सोच रहे हैं कि फिर क्या होगा। इस माहौल में हमें किसी गैर मुल्की दुश्मन की जरूरत नहीं होगी बल्कि हम खुद ही अपने हाथों से ये कहकर जलाकर सब कुछ खाकस्तर कर देंगे मरने से पहले इन जालिमों को खत्म कर दो। तो ये है वो खौफनाक मंजर जिसकी तरफ आपने इशारा किया जिसको मैंने बारे में आपको बताया।
सर आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब मेरे साथ हैं। हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक देते हैं वेलकम बैक बिकॉज टॉप ऑफ द आवर का वक्त हुआ चाहता है स्टे ट्यून्ड प्लीज।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, because we care.
क्या आपके पास आइडियाज या तजावीज हैं कि आप एक नई बैरूनी तफरी जगह में क्या देखना चाहते हैं? सिटी ऑफ ब्रैम्पटन आपके ख्यालात का इजहार करने के लिए सितंबर 23 सैटरडे सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ब्रैम्बली लिमिटेड कम्युनिटी पार्क में इनवाइट करता है। ये खुद वहां ऑन साइट मौजूद होंगे, आवाम से उनके ख्यालात तजावीज हासिल करेंगे कि ये जगह कैसी नजर आ सकती है। ये एक फ्री इवेंट है, सबके लिए खाने पीने तफरी सरगर्मियाँ मौजूद होंगी। मजीद जानने के लिए brampton.ca/engage पर विजिट करें।
A child's smile can make a big difference when it comes to their health. If you have kids under 12, earn less than $90,000 a year, and do not have private dental insurance, you may be eligible for the new Canada Dental Benefit. You could get a direct payment of up to $650 per child for dental care. Now that's something to smile about. To learn more, visit canada.ca/dental. A message from the Government of Canada.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਨਵੀਂ SUV ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ 2023 ਦੀ ਫੋਰਡ ਐਸਕੇਪ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਔਰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, 13 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1.99% ਦਾ APR ਪਰਚੇਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਲੈਕਟ 2023 ਐਸਕੇਪ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਨੂੰ। ਅਜੀ
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਲਈ 9 ਵਿਆਜ,
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਮਟਨ, 9058747171।
ब्रैम्पटन ऑन स्टेज 12 से 18 अक्टूबर तक द रोज ब्रैम्पटन पर अहद रजानीर को हैमलेट के किरदार में देखकर खुश और वेलकम करते हैं। हैमलेट, जो आजकल के दौर के लिए गजबनाक, तेज रफ्तार, इंतकाम और दागदार मोहब्बत की कहानी है। क्या आप हमारे डेनमार्क के शहजादे के साथ बाइज्जत, खुशहाली, पागलपन के दरमियान लाइन पर चलने की हिम्मत करते हैं? ये तब्दीली सिर्फ सच्चा सानिया ही ला सकता है। देखना मत भूलिएगा हैमलेट, 12 से 18 अक्टूबर तक द रोज ब्रैम्पटन में। सेल टिकट्स खरीदने के लिए विजिट करें brampton.ca।
ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੋਮਸ ਰਿਅਲਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਫ੍ਰੀ ਬਾਇਰ ਐਂਡ ਸੈਲਰ ਲੀਡਸ, VIP ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, 1-on-1 ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ, ਟੀਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਮਾਡਰਨ ਆਫਿਸ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ, ਇਨ ਹਾਊਸ ਮੋਰਗੇਜ ਐਂਡ ਲੋਇਲ ਟੀਮ, ਇਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਾਦੀ, ਆਓ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੋਮਸ ਰਿਅਲਟੀ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-890-1300 ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ehrb.ca।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप 2 कारों और 1 घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर, 6472903773। ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
جی سر، پروگرام میں ایک دفعہ خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں جناب سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کارپوریٹ فارمنگ کے بارے میں آپ نے بتایا، پاکستان افواج آٹوکریٹ جو سسٹم اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جناب لودھی صاحب، خالد نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ آئے تھے، تو انہوں نے 3 پاسبلٹی کہی تھیں کہ کیا سینیریوز ہو سکتے ہیں، مگر دا موسٹ جو دا سسٹم وچ کین ورک از کہ 3 سال تک یہی سسٹم چلے جس میں पीछे से फौज हो और सामने से ऑटोक्रेट्स हों, और यानी आप 3 साल तक आप चीजें जो बिगड़ चुकी हैं उनको दुरुस्त सिमत में लेके जा सकते हैं, और इलेक्शन उस सूरत में 3 साल तक तवक्को नहीं की जा सकती। मगर क्योंकि दुनिया में वो कहते हैं अपना मुंह भी रखना है, अपना पर्दा भी रखना है, और दुनिया को पता भी ना लगे मार्शल लॉ है और मार्शल लॉ भी है, मगर जाहिर है इस वक्त तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस मुल्क में और मुल्क के बाहर बैठ के बार बार यही कह रहे हैं कि डोरियां किसी और के हाथ में और वो अफवाज हैं, और अमेरिका खुद बुलंदोबाम ये बात करता है कि डीप स्टेट अगर हम पाकिस्तान को कहते हैं कि हमारे लिए आसान है एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ डील करना रादर डीलिंग विद डिफरेंट पॉलिटिशियंस और जहां स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट भी ना हो, तो क्या उन आर्मी ऑफिसर्स को जिन्होंने फौजी फर्टिलाइजर लैंड माफिया सारा अपने हाथ में ले लिया, क्या हमारे उन मुहाफिजों को अंदाजा नहीं है कि मां को अगर वो इस तरह बेचेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जनरल अब्दुल कयूम मेरे साथ थे जब एयर पे, तो उन्होंने स्टील मिल के बीच में भी काम किया, और जब मुशर्रफ दौर में स्टील मिल को बेचना चाह रहे थे या लीज पे देना चाह रहे थे तो इंडिया ने इनडायरेक्टली इंडिया की रेनाउंड शख्सियत ने दे वांटेड टू टेक इट ओवर। तो अगर कल कलाम को यह होता है तो क्या हमारी अफवाज को नहीं अंदाजा कि हाउ सीरियस इट कैन?
अब मैं आपको इससे भी ज्यादा बढ़ के एक और खतरनाक बात बता देता हूं। बस ये है कि आपको याद होगा कि अमेरिका जंग के दौरान तकरीबन को $46 बिलियन का स्क्रैप जो है अफगानिस्तान में छोड़ के गया, 46 बिलियन का, और वो अमेरिका उसको याद था, अमेरिका की ख्वाहिश थी कि किस तरीके से ये स्क्रैप जो है मैं किसी तरह बेच सकूं, और वो इंडिया को बेचना चाहता था, लेकिन लाजमी बात है कि रास्ते में राहदारी पाकिस्तान की थी तो पाकिस्तान राहदारी देने को तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान को उन्होंने फिर ऑफर किया कि पाकिस्तान की, आपको याद होगा कि जो हिलरी क्लिंटन थी ये भी आई, ये जरदारी के जमाने में आई, इन्होंने राहदारी का एक मुआहदा भी मंजूर करवाया, अफगानिस्तान का करवाया, उन्होंने कहा चलिए इंडिया को नहीं देते तो अफगानिस्तान को आप जो है राहदारी दे दें, अफगानिस्तान के साथ आपका तजारती हो जाएगा, ताकि अफगानिस्तान के मसला ये था कि उन्होंने चालाकी ये की थी कि बजाय कि हिंदुस्तान के ट्रक जाएं, होंगे ट्रक हिंदुस्तान के लेकिन रंग और प्लेटें जो है अफगानिस्तान के नंबर प्लेटें होंगी, मतलब तो अफगानिस्तान जो है वो राहदारी लेगा पाकिस्तान से इंडिया जाने के लिए, तो ये सारा सब मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त जो है इस साजिश को पकड़ लिया गया तो ये काम नहीं हो सका। नवाज शरीफ साहब के जमाने में नवाज शरीफ के साहब से यही जो दोस्त जिनका आपने जिक्र किया स्टील मिल लेने वाले मित्र जो थे, इनके पार्टी ने रब्ता किया और बाकायदा तौर पर इन्होंने एक वो कोशिश की कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब के पास से ये राहदारी जो है परमिट ले लिया जाए अफगान के नाम पे, इंडिया नहीं अफगान हो, तो ये भी सुनीद है कि उसके अंदर बाकायदा तौर पर हुसैन नवाज का भी उस टीम के अंदर हिस्सा रखा गया। और उसी जमाने में नवाज शरीफ के जमाने में हिंदुस्तान के ये बड़े सरमायाकार आए, उनको बाकायदा तौर पर अखबार में पकड़े, मैंने अखबार में पकड़ भी लिया उनको, बाकायदा बगैर वीजे के आए वहां पर, उनको बड़ी फौरी तौर पर हुसैन नवाज मरी लेके चले गए और वहां बातें होती नहीं, लेकिन ये कि ये मामला नहीं बन सका। उसके बाद फिर दोबारा कोशिश हुई, फिर यहां तक कोशिश हुई कि वहां से बकायदा तौर पे 140 बड़े ट्रक का कानवाय चला बकायदा पाकिस्तानी हुकूमत की मर्जी के साथ, और जब फौज को पता चला तो तूरखान के ऊपर फिर फौरी तौर पर रोक लिया गया, फौज ने उसे रोक लिया और फौरी तौर पर नवाज शरीफ के साथ जाकर रब्ता किया गया। फिर नवाज शरीफ साहब को इसके कॉन्सिक्वेंसेज बताए गए कि ये जो शिकायत है ये असली का शिकायत है, जो हिंदुस्तान जा रहा है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ असला बनेगा, आप लोहे का काम करते हैं स्टील का काम करते हैं तो आप खरीद लें आप एक नई या स्टील की भट्टियां लगा लें बजाय कि हम इसे इंडिया में इसे राहदारी इस्तेमाल होने नहीं देंगे। फिर दोबारा फिर ये रोका गया वहां पे, ये दोबारा उसमें और वही ये एक ये वजह भी नवाज शरीफ के डिक्लाइन की बनी थी कि ये बकायदा तौर पर यह हुआ था। अब आप ये देखें कि हमारे यहां यू तो वैसे वतन को चेहरों को बहतर से योशों ने घेर रखा है। अभी आपने जो कहा है कि मतलब मैं फौज की तरफ, आपने कहा अभी ये जो फार्मिंग कॉर्पोरेट फार्मिंग की आपने बात की उसके बारे में मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत ही खतरनाक होंगे, बेरोजगारी भी पहले की मैंने आपको आपके सामने जिक्र किया कि 2700 खानदान को हटा के सिर्फ जो है वहां पे 1800 आदमी ले आए, अब देख लें 21,000 आदमी को हटा के 1800 आदमी को ले आए तो कितने, यानी आप इसे अंदाजा कर लें कि मुल्क में फिर बेरोजगारी और कितनी पैदा होगी। कल कला आपको याद होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो किसान थे, हिंदुस्तान के किसान थे, उन्होंने बकाया तौर पर 5 महीने का धरना दिया और ये कामयाब नहीं होने दिया। हिंदुस्तान में भी एक दूसरे मुल्क थे वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करने वाले थे और फार्म जो कॉर्पोरेट फार्मिंग जो थी उसमें उन्होंने ये किया था कि हिंदुस्तान के जो अपने बड़े सरमायाकार थे वो उसमें शामिल थे। लेकिन हमारे यहाँ तो मामला बिल्कुल उलट है। हमारे यहाँ तो गैर मुल्की कंपनियों को ये दिया जा रहा है, यानी नाम लिया जा रहा है सऊदी अरब का, सऊदी अरब का फिर यूएई का नाम लिया जा रहा है, फिर उसका नाम लिया जा रहा है। मैं आपको 3 चीजें बता देता हूँ यहाँ पे, ये बड़ी जरूरी है समझने के लिए। मतलब आप देखिए हमारे जो सऊदी अरब के जो सलमान है, बादशाह सलमान, मतलब ये 20 साल तक रियाद के गवर्नर रहे। जब ये गवर्नर थे तो उस जमाने में रियाज उसमें क्रीमला शाहिद शिविर था पाकिस्तान के मुशर्रफ के जमाने में, तो उन्होंने पाकिस्तान ने मुशर्रफ ने उनको भेजा कि इनको मदद को पाकिस्तान की मदद की जाए पेट्रोल के सिलसिले में भी और कुछ हमारी माली मदद भी की जाए। तो वो जो बादशाह थे जो आजकल बादशाह हैं उस वक्त एक गवर्नर थे, तो उन्होंने इनसे जाके मिले और इन्हें जाके उन्होंने कहा कि देखें हम पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं, हर मुश्किल वक्त में हमने सबसे बढ़कर आपकी खिदमत भी की या काम भी किया, लेकिन हमारे बच्चे ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, वो आपकी मदद नहीं करेंगे, इसलिए आपको फौरी तौर पे अपनी ये मांग लगी आपको छोड़ना पड़ेगा और कोई कारोबार करना पड़ेगा, कारोबार करें, एक्सपोर्ट करें और मेहनत करें ताकि आपको मदद ना मांगनी पड़े। फिर दूसरी मिसाल ये है, जरदारी साहब के जमाने में बकायदा यूएई में बकायदा तौर पे यूएई के जो आजकल अमीर हैं इनसे रब्ता किया गया। इनसे जब रब्ता किया तो उन्होंने क्या किया कि हमारे सफीर हमारे वजीर थे वजीर सरमाकारी उनका हाथ पकड़ के हाथ हला ला के उससे बात करते कहते बात यह है कि हम एहसान फरामोश नहीं है, हमें वो याद है कि जब हम कराची में जाके आपसे मदद पाकिस्तान में पाकिस्तान की मदद मांगा करते थे, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मांगने से हमने भी सोच लिया, हमने मांग कर देख लिया था, हमने देख लिया कि अपनी किस्मत नहीं बदल सके, लेकिन जब हमने कारोबार करना शुरू किया, अपने कदमों पर खड़ा होना शुरू किया, अपने व्यवसाय इस्तेमाल करने शुरू किए, तो आज हम इस हाल में हैं कि आप भी हमारे पास से मदद मांगने के लिए आ गए हैं। इसलिए आपको हमारी गुजारिश यह है कि खूब कारोबार करें, कारोबार के सिलसिले में हम आपके साथ हैं। ये पैगाम जब पहुंचा तो पाकिस्तान के वो लोग उनको फिर भी अकल नहीं आई, फिर भी आज भी ये एक कसा गदाई का जो लेके जगह जगह घूम रहे हैं। मतलब अब ये बकायदा तौर पे ये जो जमीनें कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू हुई इसलिए शुरू की गई है क्योंकि बाहर के मुल्कों ने मदद देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है और हक बजानब है, एक पैसा भी आपको मिलने का नहीं कोई हवादार के आपको पैसा दिया जाए। लेकिन अब आप ये देखिए कि ये इसके साथ साथ पाकिस्तान को सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं कि उसकी मईशत जो है उसकी बिगड़ रही है। आपने लोधी साहब का जिक्र किया उसकी बात का, मैं थोड़ा सा उनकी बात को भी टच करना चाहता हूं। आप देखें कि हमारे सबसे ज्यादा खतरनाक और खौफनाक ये है कि हमारे मुल्क में एक जो लहर आ गई है हमारे पास वो जो इसकी दहशतगर्दी की, इसको कौन रोकेगा? आप हैरान होगी कि इसको जो है सबसे ज्यादा खतरनाक ये है कि इसने मुल्क शांति के लिए एक चैलेंज खड़ा कर दिया है, बताया नहीं जा रहा। आपको याद है कि कुछ महीने पहले बाजौर में एक मौलवी फजलमान के जवान दरसे में खुदकुश हमले में दर्जनों अपराध शहीद कर दिए गए थे और 150 जख्मी हो गए थे, लेकिन अब भी वहां हालात पुरसकून नहीं है। वजीरस्तान ले लें, टांक ले लें, मीर अली ले लें, मीरान शाह देखें, वाना को देखें, बन्नू को देखें, हंगू को देख लें, कर्म एजेंसी को देख लें और गजा एजेंसी, इस सारे लहूलुहान है। यानी रोजाना वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसको सुनकर दिल बहुत परेशान है। फिर ये खबरें भी आम है कि केपी के जो तरक्याती काम शुरू करने से पहले, आपको पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि टीटीपी उनको खास भत्ता पहुंचाया जाता है तब जाके आप तरक्याती काम शुरू करते हैं, ये क्यों बताते हैं हमारी कौम को ये बताया जाता है? ये बात ढकी छुपी नहीं रही अब। यानी टीटीपी ने आइंदा इंतखाबात को सेबोटाज करने का ऐलान कर रखा है। अब इन हालात में वहां पुरमन, अब वहां पे जो अमन अमान है ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया हुआ है, इसको आप कैसे खत्म करेंगे? ये तो खत्म होने का नाम ही ले रहा है कि आप खत्म करेंगे, इसको कैसे खत्म करेंगे आप? मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है, ये इसकी तरफ भी हमें गौर करना होगा कि हम वहां पे कैसे इसको कंट्रोल करें। फिर अब इंतखाबात देखें वापस तब मुमकिन हो गए जब वहां पर अमन अमान होगा। इसके लिए यकीनन हमारे सिक्योरिटी इदारे मुल्की दफा के लिए हमेशा की तरह कुर्बानियों की एक लावदार जो मिसाल भी कायम कर रहे हैं, मुझे इसका इनकार नहीं है, लेकिन यह भी जेर चीज रखना चाहिए कि दुश्मन तो चाहता है कि आपके लिए कई मार्ग खोल दिए जाए और आपको बिलाखत थका दिया जाए। अभी आपकी जिम्मेदारी है ना कि इन मुश्किल हालात में अंजाम पर नजर रखते हुए तो दोपहर के साथ ऐसी तदबीर के साथ काम ले कि दुश्मन फोर्सेस के नापाक इरादों को शिकस्त फाश हो। दुश्मन तो चाहता है कि आपके आइंदा लाए मुझसे पाकिस्तान के अनुमान को इस कदर खराब कर दिया जाए कि इंतखाबात हो ही ना, ताखीर का शिकार हो जाए या 3 साल तक जैसे उन्होंने कहा वो वहां पर चल जाए। जुमहूरी का सफर वो कहेंगे शोर मच जाएगा, जुमहूरी का सफर रुक गया है, मस्जिद को सवारने के तमाम प्रोग्राम में रखना डालने की कोशिश में पूरी कोशिश कर रहा है और करेगा। सी पैक में उन्होंने ऐसा टारगेट बनाया हुआ कि दिन रात आप देखिए कि चीन, अब वो कोशिश करने के किसी तरीके से चीन से दूरी पैदा हो जाए, बड़ी मुश्किल से चीन को दोबारा घेर के हम लाए हैं वापस। अब और गैर मुल्की सरमाया था तो वैसे ही भागे हुए हैं करीजा। इन तमाम मनफी असरात का मुल्क बर्दाश्त, जो मुल्क जो हमारा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और यही हमारा दुश्मन चाहता है। अच्छा एक बात और यहां याद रखें कि अफगानिस्तान में फिलहाल जंग खत्म हुई है लेकिन जंगजू तो अभी तक मौजूद है वहां पे। जंगजू को तो कोई भी उनका जंग का मैदान चाहिए, उनको तो उनके पास उनको भी मसरूर, वो खुद को भी मसरूर रखना चाहते हैं। अब जंगजू अपने लिए टारगेट तलाश कर लेता है और टारगेट तलाश करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, हमारे दुश्मन से टारगेट दे देते हैं, उनकी उनकी रोजी रोटी चल रही, वो तो अपने आप को मसरूर रखा है उसने, वो तो करना करता है करता रहेगा। अब बुनियादी बात यह है कि बाढ़ लगाई हमने, इस बाढ़ के होते हुए 40-50 हजार पाकिस्तानी नौजवान अफगानिस्तान कैसे चले गए और जो वहां पर जंग खत्म हो गई तो 40-50 हजार पाकिस्तान वापस कैसे आ गए, ये एक सवाल है दोनों मुल्कों के, दोनों मुल्कों से अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान के जो हमारे इदारे हैं उनसे भी, दोनों मुल्कों के लोग जो गैर महफूज हैं। अब इस पर हम गुजारा करते रहेंगे यदि हम इन अफगानों पर इल्जाम लगाते रहे, वो हम पे इल्जाम लगाते रहे।
शुक्रिया सुनील भाई, अब मामला तो सिर्फ इतना है कि अल्लाह करे कि इन चीजों का सलूशन कोई निकल आए और आर्मी यकीनन इसको, वही बात है ना, मुझे बहुत से लोग कॉल करके कहते हैं कि सलूशन बेस्ड प्रोग्राम रखें, भाई सलूशन तो उन्हीं लोगों ने करना है ना कि जो कोई गवर्नमेंट्स हैं, मगर मेरा ख्याल है कि अगर लोगों की जिंदगी को आसान बना देगी फौज तो लोग आगे पीछे सबको भूल जाएंगे।
आपको बता रहे हैं ना, आपने सही बात सही जवाब दिया, सलूशन वही करेंगे हम, तो बस आपके जरिए मसाइल बताएंगे।
मगर समी भाई लोग तो लोग ये कहते हैं ना कि मशवरा तो बाहर से सारे देते हैं, आप सलूशन भी तो ऐसे लोगों को लेके आए जो हमें मतलब इस भंबल भूसे से निकालने की कोशिश करें, तो बहरहाल अल्लाह ताला मदद करे पाकिस्तान की।
बेहतरीन इलाज ये है कि अफगानिस्तान के साथ बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू किया जाए, अपने ही दफ्तर में बुलाकर उनको घंटों इंतजार का तौहीन इंतजार न करवाया जाए। आपने अफगानिस्तान के जीरे खाते के दरवाजे तुर्कन के बॉर्डर पर जो सहूलत देने का ऐलान किया, ये अच्छी बात है। अब जरूरी हो गया कि इसी बहाने इस ब्रदरान पेशकश के बाद मजीद इकदाम उठाए जाए, ये सूचित तो ये भी है, यानी कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि दहशतगर्दी के जो अफरीत का है इसका मिलकर इसका या दोनों मिलकर इसका इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में मौजूदा लिबरल सेकुलर और शिद्दत पसंद और अमरीकी पिटारी के दानिश फरोश है ना, ये काबुल और इस्लामाबाद में बढ़ती हुई दूरियों को देखकर बगले में जा रहे हैं, बढ़ चढ़कर वहां तालिबान के खिलाफ कानून लिखे जा रहे हैं और पाकिस्तान की तमाम सीटों की जब काबुल हुकूमत को बदकरार दिया जा रहा है। ये सब पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम की खिदमत नहीं कर रहे बल्कि मजीद नफरतों को हवा दे रहे हैं। ये भी सलूशन आपको बता रहा हूं, इनको लगा दी जाए, क्योंकि अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान दोनों यकजान दो कालब बनाने चाहिए इनको, दोनों तरफ से मोहब्बतें और कुव्वत का जज्बा मौजूद है। खुदारा दोनों मुल्कों अपनी सरजमीन पर दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल से सख्ती से रोकें, ये दहशतगर्द किसी के अपने नहीं होते। मैंने पहले बताया ना कि टीटीपी के नाम से पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो किसी की में भी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन कार्रवाई को काबिल हुकूमत के खाते में डालना भी कोई क्रिमिनल इंसाफ नहीं है। इसलिए काबुल और इस्लामाबाद को आपस में बामकसद मुज़ाकरात करने चाहिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों के दरमियान कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये एक दूसरे को मालूमात फराहम करते रहें। तो दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की नई हदबंदियां मुकर करने और आपके जारी एहसाब के बना पर अगर इंतहा ताहिर का शिकार होते हैं तो इसके पस मंजर में होने वाली उन कुमतों में भी नजर रखी जाए। ये सूचना आपको बता रहा हूं कि जो इसकी आड़ में मुल्क में मराफरत और फतहबी को मैं इसलिए हवा देंगे ताकि इनके गिर जो एहसाब का शदीद तरीन तंग घेरा खत्म हो सके। इसके लिए मुमकिन है कि वकला की तारीख से इसका, ये मैं पहले भी कहा था आर्मी में कह रहा हूं कि मुमकिन है इस तहरीक का आगाज जो है वकला की तारीख से शुरू कर दिया जाए, उसके पीछे आके में सारे खड़े हो जाए और जाके ताकि ये जो एहसाब का आपने शुरू किया है, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपसे ये कहा था कि भी ये एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है हिंदुस्तान की सोलह सिस्टम उनका नाम लिया जा रहा है रिटायर्ड का, एक ब्रिगेडियर उनका डॉलर के उनका उनका नाम लिया गया है, उनके वहां भी गिरफ्तार किया गया है। इसलिए काम तो बहुत हो गया। आज आप देखें, आज ही मैं देख रहा था कि जिस जमाने में ऐलान हुआ था जब से ये काम शुरू हुआ है और आप ये सोलह काम खत्म करने का जो लोग लगे हुए हैं, आपका डॉलर जो है 3370 कम हो गया है।
सही सही,
आप ये
समी भाई, बस अल्लाह ताला बेहतर करे और ये हुकूमत कुछ कर सके, हमारा तो टाइम खत्म हो जाता है और इसी तरह हमारी जिंदगी का टाइम भी खत्म हो जाना।
अभी ये देखिए ना, मैं आपने जो आप अहबाब आपसे पूछते हैं, यकीनी बात है कि मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, तभी वो आपसे पूछते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या किया जाए। सोल्यूशन भाई, हम तो मसाइल बताएंगे इस, ताकि आप भी वेल अवेयर हो, आप भी अपने मुल्क में अपने चीजों को बता सकें कि ये मसाइल हैं। आप पूछा करें, इंटरेस्ट लें। आप
शुक्रिया, आप इंटरेस्ट लें। किसके साथ इंटरेस्ट लें? तालीम आप नहीं देने देते, झूठ आपने बोल बोल के कौम को उल्टी तरफ लगा दिया है। एनीवेज हमारा टाइम समीम भाई अब तो अप हुआ, क्योंकि मेरा दिल था कोई एक अच्छी सी मैं बात भी कर लेती और फिर आगे चलती। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दे दीजिए। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया समी डॉक्टर समीउल्लाह मलिक से। अब लो जी, बंदा जिधर भी जाता है ना जलजला आ जाता है। कर लो बात, कैसे जहां जहां इंसान जाता है जलजला, वो चांद के ऊपर भी जलजला आ गया। कैन यू बिलीव इट? और वो कहना हमें तो जलजला आया ही हुआ है, कल से जलजला आया हुआ, जब से प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने ये कह दिया है कि जी इंटरवीन किया गया है और हमारी RCMP के पास शवाहिद मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इतने वसूख के साथ कोई बात कर नहीं सकते, और आज उसको सेकंड कर दिया गया है। इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, और अमेरिका ने भी कहा है कि अगर ऐसा है तो ये बड़े कंसर्न की बात है। एनीवेज, चांद के ऊपर आपको पता ही है कि इंडिया के ने तारीख जो चांद का कोना है उसके ऊपर, यानी जनूबी कुतब के ऊपर, उन्हें पहला खलाई मिशन भेजा था, चंद्रयान 3 ये था। और चंद्रयान 3 को जमीन से कंट्रोल किया जाता है, हालांकि चांद से जमीन तक तस्वीर आने में टाइम भी लगती है, मगर इस चंद्रयान 3 की जो टांगे हैं वो एक वक्त में नहीं चलती, एक कदम लेता है तो बाकी 3 अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ता है। अब तक 2 गढ़ों का इसको सामना है। खुदा न खास्ता चांद की सतह के ऊपर गढ़े भी हैं, और अगर कहीं गढ़े में गिर जाता है तो फिर इसका वहां से निकलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तक 2 गढ़ों का इसको सामना करना पड़ा, मगर यू नो देयर कंपीट टीम इज वेरी कंपीटेंट, उसको गिरने नहीं दिया गया। मगर अभी वो कहते हैं कि चांद की सतह से इसने जब टेम्परेचर भेजा है बैरूनी सतह का और थोड़ी खुदाई करने के बाद नीचे का, टेम्परेचर का डिफरेंस डिफरेंट लेयर्स में पाया जाता है, जो कि 60 सेंटीग्रेड से लेके -10 सेंटीग्रेड के दरमियान फ्लक्चुएट करता है। बहरहाल ये जब मैं पढ़ी थी आई वॉज वेरी सरप्राइज। वो कहते हैं ऊपर की 10 सेंटीमीटर की नीचे से जमीन और 10 सेंटीमीटर नीचे से जो नमूना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड था तो सतह के नीचे -10 डिग्री। दिस इज स्ट्रेंज, इट्स वेरी स्ट्रेंज। जैसे हवा के बीच में आपको पता ही है कि एक इल्यूजन जिसको कहते हैं सराब, उर्दू में तो सराब कहते हैं, अंग्रेजी में उसको मिरज का नाम दिया जाता है। कभी आप जाएं ना बहुत गर्म जगह के ऊपर तो आपको सराब आंखें धोखा खा जाती हैं कि दूर ज़मीन के ऊपर पानी है, वो पानी नहीं होता। एक्चुअली हवा में गर्मी होने की वजह से ज़मीन गर्म होके हवा की डिफरेंट लेयर्स बनती चली जाती हैं, डिफरेंट डेंसिटी की, ठीक है जी। इल्यूजन नहीं, इसको कहते हैं मिरज कहा जाता है। इसमें टोटल रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। टोटल रिफ्रैक्शन शुरू हो जाती है और वो आपको दरख्त का साया उल्टा नजर आ जाता है, या आपको लगता है जमीन के ऊपर पानी है, मिरज या सराब का नाम दिया जाता है। तो आई वॉज सरप्राइज के जो अपर लेयर का टेम्परेचर अगर 60 है तो जस्ट 10 सेंटीमीटर नीचे का जो टेम्परेचर है दैट इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड। एनीवेज इसके बाद उन्होंने कहा कि चांद के ऊपर जलजले का, चांद के इर्तका को भी इसने नोट किया है और चांद पर जलजला आया था। ये इस जो चंद्रयान है इसके ऊपर एक ऐसा आला भी नसब तहकीक व तजुर्बात के इर्तआश को नाप सकता है। कहा जाता है कि लूनर सेस्मिक एक्टिविटी नामी इस आले को कान तो जमीन की जानिब था, ताहम इसने एक कुदरती इर्तआश, यानी आवाज तो नहीं मगर वो जो एक इर्तआश या वो इर्तआश वाइब्रेशन को इसने महसूस किया और काफी ताकतवर इर्तआश था। तो ज़ाहिर है इर्तआश तो तभी होगा ना, अगर जमीन थरथराएगी कांपेगी तो जलजला ही आया होगा ना। अस्तग़फ़ार, जलजले का नाम सुन के मुझे वो सूरत याद आ जाती है, अलकारिया वलकारिया के कड़कड़ाने वाली, क्या है गड़गड़ाने वाली, खड़खड़ाने वाली, क्या है खड़खड़ाने वाली, मुझे वो याद आ जाता है। एनीवेज, चांद के ऊपर भी जलजले आते हैं, दुनिया में कहीं भी जलजले आ सकते हैं। जाहिर है हर चीज की कोर जो है वो लावे से बनी हुई है, मिश्री में भी जलजले आते होंगे, जरूर आते होंगे। अच्छा, मेरी एक बहुत प्यारी बहन है, उनका नाम है फरत, और माय गॉड, अल्लाह ने उसके सोने के हाथ बनाए हुए हैं। सोने के हाथ उसके कैसे बनाए हुए हैं, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह उसको तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम आमीन। कि वो कहते हैं ना कि कपड़ों को रंग लगा देती हैं जीते जी, यानी कोई भी जिस्म हो पहना हुआ कपड़ा सजता है, फगता है। तो मैं पिछले कोई 22-24 दिन से फरत को कॉल कर रही थी, फरत मेरा फोन ही नहीं उठाया। थॉट और लाया जी, फरत लड़ गई, फरत लड़ गई, नाराज हो गई। फरत मेरी जान, मैं ऐसी हूँ, अपनी जिंदगी के चक्करों के बीच में ऐसी उलझी हुई होती हूँ कि क्या बताऊँ। बहरहाल, आई अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदरुस्ती दे, अपने बच्चों के सुख और खुशियों को आप देखें, आमीन सुमा आमीन। आइए साहब, एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ लेके चलूंगी और उसके बाद एक मुलाकात की तरफ लेके बढ़ूंगी। बल्कि अगर आप भी अपने कपड़े सुनवाना चाहते हैं तो आई नो टू पीपल, वन इज फरत एंड शी इज इन मिसेस सागा, दैट इज डिक्सी एंड ब्लूर, डिक्सी एंड ब्लूर, एंड द अदर वन इज इन ब्रैम्पटन, वंडरफुल पर्सन बुशरा बाजी, शी इज माई सिस्टर, शी स्टिचेज वेरी नाइस क्लोथ्स एंड शी इज इन ब्रैम्पटन। तो अगर आप चाहें तो आप दोनों के नंबर मुझे हासिल कर सकते हैं। जिक्र करना चाहती हूँ डॉक्टर मुजीब काजी का, अगर आप डेंटल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, इम्प्लांट्स कराना चाहते हैं, तो डॉक्टर मुजीब काजी टू क्लिनिक से आपको सर्व करते हैं। वन इज ऑन क्वींस, क्वींस एंड कैनेडी, हैंसन, बेसिकली इट्स अ हैंसन, हैंसन एंड क्वींस के इंटरसेक्शन पे, सेम एरिया में उनका सेकेंड क्लिनिक है, दैट इज विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टर ड्राइव के ऊपर, स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक है। मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर मुजीब काजी तमाम तरह के इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं, 9057937373। और बेशतर इसके कि अब देखिए जी, सितंबर और अक्टूबर चढ़ने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीन महीने रह गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो बजाय इसके कि वो लोग जो कंपनीज में काम करते हैं कि आपकी एग्जॉस्ट हो जाए आपकी इंश्योरेंस जो कंपनी से है, तो बेहतर है कि अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा। डॉक्टर मुजीब काजी का नंबर 9057937373 उनका नंबर है। दो एक स्पॉन्सर एंड आई विल टेक यू टू वेयर जनाब फयाज विलाना साहब हमारे साथ होंगे, और फयाज विलाना साहब से बात करने से पहले एक इंटरव्यू की तरफ ना लेके चलें, मेरा ख्याल है। लेट मी, जब तक शरबत मिलाती है, मैं दो एक स्पॉन्सर्स को कवर कर लूं। एग्जेक्टिव होम रियलिटी के बारे में भी सुन लीजिएगा कि अगर आप रियल स्टेट के बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर प्रोफेशन, तो एग्जेक्टिव होम, देयर आर सो मेनी सक्सेसफुल स्टोरीज आउट देयर। तो एग्जेक्टिव होम रियलिटी 9058903000 कितना लंबा सांस लिया है अवाम के साथ ना, 9058903000 उनका नंबर है। नेक्स्ट टू वायरलेस के बारे में भी आपको जरूर बताना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि हमारे जनाब सईद मियो साहब जाहिर ही डज लुक आफ्टर दिस बिजनेस हिमसेल्फ, वायरलेस टेलीफोन, टेलीफोन की डिफरेंट डील्स के बारे में अगर आप देख रहे हैं, चाहे वो एप्पल का है, चाहे वो सैमसंग का है, या आप बेल का या रॉजर्स के कनेक्शन की तरफ देख रहे हैं, या आप प्री पेड वो जो टेलीफोन कार्ड्स हैं वो लेना चाहते हैं, या तो आप रब्ता कीजिए नेक्स्ट टू वायरलेस। सैमसंग का ड्यूअल सिम का नवा नकोर फोन डब्बे में बंद वारंटी के साथ सिर्फ 120 का, हाउ इट इज पॉसिबल, आई डाउट इट वेरी मच। 6472720020, 6472720020, 6472720020 उनका नंबर है। बिलावल भुट्टो ने, आप बताइए कि कनाडा में बड़ी शुनीद है कि इंडिया ने इंटरवीन किया है। आज बिलावल भुट्टो साहब जो जाहिर सेक्रेटरी भी, आपको याद होगा जयशंकर, जब बिलावल इंडिया गए हुए थे तो जयशंकर ने बिलावल भुट्टो से हाथ नहीं मिलाया था, उन्होंने कहा था पहले पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेशुमार हुए। अभी आज देख लीजिए कनाडा ने जो पैगाम दिया है, और बड़ा वाजे पैगाम है, ऑस्ट्रेलिया ने भी दे दिया, इंग्लैंड ने भी दे दिया, और इवन आपके जो पॉलिटिशियंस कैंडिडेट्स हैं वो भी उस गवर्नमेंट के एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। तो व्हाट आर वी डूइंग हियर इन कनाडा, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा है कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत पर एक सिख कैनेडियन शहरी को कत्ल करने का जो इल्ज़ाम आयद किया है ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अब वक्त आ चुका है कि आलमी बरादरी एतराफ़ करे कि भारत एक तंजीम के तहत चल रहा है और अब इंतहा पसंद रियासत बन चुका है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है और आज जब कनाडा में हुआ तो आपको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में पता, पुलवामा का वाक्या हुआ था, पाकिस्तान बार 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 ये कहता था इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। बॉम्बे का जब वाक्या हुआ था इट वॉज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ठीक है, और पाकिस्तान ने दोनों मौके के ऊपर इंडिया से ये कहा कि आप हमें इसकी डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए, नेवर डिड सो। एनीवेज आइए एक मुलाकात की तरफ लेकर के बढ़ती हूँ और मुलाकात में हमारे साथ हैं शिराज शफीक अकाल मॉर्गेजेस के साथ। जनाब शिराज शफीक, अगर आपको लोन्स, लाइन ऑफ क्रेडिट, ऑफ कोर्स बिजनेस इज स्लो दीज डेज, मैं चाहूंगी कि शिराज हमारे साथ जरूर अपने तई अपनी कंपनी का तारफ कराते हुए शेयर करें कि आज के दौर में इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं और अगर हम आपसे राबता करते हैं तो बैंक से या बी लेंडर, सी लेंडर या प्राइवेट फाइनेंसर से मॉर्गेज कैसे आप लेके दे सकते हैं। शिराज हम आपको खुश आमदीद कहते हैं 416-502-8000 और मुझे यकीन है कि आप तसल्ली के साथ हमें इन दोनों बातों के बारे में बताइए।
जी आरफा जी, जहाँ तक बात है ना आज इंटरेस्ट रेट की, तो आरफा जी मैं थोड़ा सा पहले बताता चलूँ अपनी कॉर्पोरेशन के बारे में। देखिए हम लोग जो अकाल मॉर्गेज वाले हैं, बेसिकली पिछले 20-22 साल से मॉर्गेज इंडस्ट्री के अंदर हम लोग सोल्यूशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, अकाल मॉर्गेज अपने नाम और काम दोनों की वजह से जानी जाती है। आप जो हमारे बहन भाई हैं आरफा जी, चाहे वो किसी किस्म की उनको कोई लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए या उनको कोई होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए या कोई फ्रेंचाइज लोन चाहिए या वो कोई कमर्शियल मॉर्गेज लेना चाह रहे हैं, तो ये सब बेसिकली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये सारी की सारी सर्विसेज हमारी ब्रोकरेज में प्रोवाइड की जाती हैं। आरफा जी अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट की तरफ आएं तो आज की जिन इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई है वो आपके सामने से भी गुजरी है, आपने भी देखी है, इन्फ्लेशन दोबारा जंप करके 4% पे चली गई है। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली अभी तो कुछ भी सुनने को नहीं आ रहा, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि माइट बी पॉसिबल अनदर हाइक जो कि कमिंग सून आने वाली है। अच्छा जब हाइक की बात करते हैं आरफा जी, के अभी जो हमारा प्राइम चल रहा है वो चल रहा है 7.20, ठीक है ना। अब 7.20 अभी प्राइम चल रहा है, अगर लेट से सपोज कर लें कि 0.25 की और हाइक आ जाती है तो हमारा जो प्राइम है वो इंक्रीज करके 7.45 पे चला जाएगा। अब हम लोग तो आगे ही बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, हमारे जो बहन भाई हैं वो बड़ी मुश्किल से अपनी जो है ना मॉर्गेज पे कर रहे हैं। वजह क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी हाई हो गया है। हमें जहां पे हमारी पहले मॉर्गेज बनती थी 700,000 के ऊपर, वहां पे बन रही है $4,200, तो ये अफोर्डेबिलिटी जो है ना ये खत्म होती सी नजर आ रही है। ऊपर से क्वालिफाई करना हमारे बहन भाइयों के लिए काफी मुश्किल हो गया है। हमारे वो बहन भाई जो पहले ए लेंडर के लिए क्वालिफाई करते थे ना आरफा जी, अब वो जा रहे हैं बी लेंडर के ऊपर। अब जब बी लेंडर की बारी आती है बात करते हैं, तो आरफा जी हमारे बहन भाई जो है जितनी एफर्ट करते हैं ना मॉर्गेज लेने के लिए, इतनी एफर्ट जब इनकी रिन्यूअल आती है ना उस वक्त नहीं करते हैं। वो लेते हैं मॉर्गेज और लेके बैठ जाते हैं और हाई इंटरेस्ट वहां पे करते जाते हैं। अब क्योंकि बी लेंडर के पास जब आप जाते हो तो आपको 20% डाउन पेमेंट चाहिए। आरफा जी लेट से कि अगर किसी बहन भाई के पास 10% पड़ा हुआ है तो वो 10% बाकी जो 20% पूरा करने के लिए किसी प्राइवेट लेंडर से उठा लेता है, वो 20% करके तो बी लेंडर से मॉर्गेज उठा रहे हैं। अब एक तो प्राइवेट लेंडर की मॉर्गेज है, ऊपर से वो फिर बी लेंडर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो अब दोनों साइड पे उनको इंटरेस्ट रेट हाई पे करना पड़ रहा है। आरफा जी हमारे जो ऐसे बहन भाई हैं जिनके ऊपर ये मॉर्गेजें हैं, हम उनकी इन दोनों मॉर्गेजों को कंसोलिडेट करके ना एक मॉर्गेज कर सकते हैं, और अगर वो फर्दर क्वालिफाई करते हैं तो उनकी इसी मॉर्गेज को हम लोग ए लेंडर पे लेके जा सकते हैं। ए लेंडर एज कम्पेयर टू बी लेंडर और प्राइवेट लेंडर अभी भी सस्ता है, लेकिन अगर आप लोग एफर्ट नहीं करोगे, डरते रहेंगे, बैठे रहेंगे, किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप अपने जितना भी पैसा है वो सारे का सारा इंटरेस्ट में पे करते जाएंगे, आपका प्रिंसिपल पे नहीं होगा। इसलिए ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें डरने की कोई बात नहीं है। देखें आप ऑलरेडी हाई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर उससे कोई नीचे लेके देगा तो फिर ही आपको मूव करने का फायदा होगा, अगर उससे नीचे नहीं कोई लेके देगा तो आपको मूव करने का फायदा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो बहन भाई हैं सेल्फ एम्प्लॉयड अरफा जी, देखिए वो लास्ट मोमेंट तक का वेट करते हैं कि जी हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, ब्रोकर जो है काम कर रहा है उसके ऊपर तो हमारी क्लोजिंग हो जाएगी, लेकिन वो उसका फॉलोअप ही नहीं करते। अब लेट से किसी ने 3 महीने पहले या 4 महीने पहले की फाइल दी हुई है और उसकी क्लोजिंग आ गई है, तो लास्ट मोमेंट पर उनको वो सरप्राइज मिलता है जी कि उनकी प्राइवेट मॉर्गेज से मॉर्गेज जो है ना होनी है, क्योंकि उन्होंने फॉलोअप नहीं किया, उन्होंने किसी से डिस्कस नहीं किया, कोई और ऑप्शन नहीं देखा, तो मजबूरन उनको प्राइवेट लैंडर पे जाना पड़ता है। वहां पे फिर उनको जो है प्राइवेट लैंडर की फीस भी पे करनी पड़ती है, वहां पे फिर उनको हाई इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे आरफा जी केसेस हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे बहन भाई परेशान हैं जो कि एंड टाइम पे आके अपनी मॉर्गेज जो है प्राइवेट लैंडर से क्लोज करने पे फंस मजबूर बैठे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की अभी सिचुएशन चल रही है आरफा जी, आजकल जो प्रॉपर्टीज है उनकी अप्रेजल नहीं आ रही, वो वहां पे भी आके स्टक हो जाते हैं। तो मेरी इन सब बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि देखो जी आपके पास टाइम बहुत सारा पड़ा हुआ है, बिल्डर ने आपको टाइम दिया हुआ है, आप अपना वर्कआउट पहले शुरू करो ताकि आपको लास्ट मोमेंट के ऊपर कोई सरप्राइज ना मिले। अगर 3 महीने बाद आपकी क्लोजिंग है, आप 2 महीने पहले भी काम शुरू करते हो और उसका फॉलोअप करना शुरू करते हो, तो 1 महीना पहले आपकी मॉर्गेज रेडी होनी चाहिए ताकि लास्ट मोमेंट के ऊपर ना आपको कोई सरप्राइज ना मिले। अगर आप उसका फॉलोअप नहीं करोगे, आपकी मॉर्गेज नहीं होगी, तो फिर ऐसे ही होगा कि लास्ट मोमेंट के ऊपर आपको प्राइवेट लैंडर से ही जाना पड़ेगा और वहीं पे आपको फिर अपना जो है ना इंटरेस्ट, हायर इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा और हाई जो है ना उसकी लैंडर की फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो मेरी आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वेट ना करो, अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करो, कॉल करो, ताकि आपको पता चल सके एटलीस्ट कि आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। हम लोग आपको गाइड करने के किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं चार्ज करते, ठीक है ना। हम लोग उसी सूरत में आपको चार्ज करेंगे जब आप हमारे पास आते हो, हम आपका काम करते हैं और पहले डिसाइड होता है कि देखो जी कि ये आपकी फाइल है, इसके हम लोग 1% चार्ज करेंगे और आपकी मॉर्गेज होगी तो क्लोजिंग वाले दिन हम लोग।
साजोबाज के लिस्टर्स का जरा हाथ हल्का रखिएगा ना प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपने कहा कम से कम 1 महीना पहले आपके कागजात हो, अब मेरी भी मॉर्गेज आप ही ने कराई है, मैं देखती हूँ ना। अब ये ना हो कि आप मुझे फिर बाद में कहते ओ आरफा जी आपने 3 महीने पहले करा ली थी ना, तो इसलिए गड़बड़ हो गई है।
नहीं नहीं नहीं, आपको कहना है, आपको तो लेके प्राइवेट पे जाना है ना।
है बात आ जा,
आपको तो लेके प्राइवेट पे जाना है। आपको किसने बोला कि आपने एलेंडर पे जाना है? आपके पास बहुत पैसे पड़े हुए अरफा जी, ऐसी जो पार्टीज है ना जिन्होंने डिग करके बेसमेंटों के अंदर अपने बैग संभाल के रखे हुए हैं, ये सेम सिचुएशन पाकिस्तान वाली है, वहाँ पे निकल रहे हैं ना वो बेसिकली।
नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आपके पास तो मेरे पेपर्स हैं। यस आई अर्न, आई मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी व्हाइट मनी मेरे पास है नहीं, ऐसी ब्लैक मनी मेरे पास नहीं।
आपने खुद ही कह दिया व्हाइट मनी नहीं है।
नहीं ब्लैक मनी मेरे पास नहीं, नहीं मतलब उस तरह के पैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। 4165028000। मगर इसका मकसद ये है कि बिफोर टाइम आप अपनी मॉर्गेज को अरेंज करवा लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। 4165028000 शिराज शफीक का नंबर है। और इतना आसान होता तो शिराज मैं भी जिंदगी में ऐश कर सकती थी। आई डू 2 or 3 जॉब्स, you know that's what it is, and alhamdulillah I don't regret at all. 4165028000 Akal Mortgages ke sath janab Shiraz Shafiq, thank you very much.
Thank you ji Arfa ji,
thank you very much.
aapki ek marta file ko review karke aapko okay keh diya to hum hamesha apne vaade pe pura hota.
bahut shukriya बहुत शुक्रिया। 4165028000 अकाल मॉर्गेजेस का शिराज शफीक साहब। अभी थोड़ी देर के बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी और हम मुलाकात करवाएंगे जनाब फयाज फिलाना साहब से, मगर उससे पहले आपको लेकर के जाना चाहती हूँ कि आपको पता ही है कि ये चंद एक चीजें जो हैं थोड़ी सी बिफरी हुई हैं और जो पाकिस्तान कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बयान के बाद, और RCMP ने उन्होंने कहा कि इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा उनके इंडिया दौरे से पहले G20 से पहले ये कह दिया गया था RCMP प्रोब जो कर रही थी कि कनाडा की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। और ये तो एक अरसे से चल रहा है कि इलेक्शन में भी बाज लोगों को फेवर्स दी गई थी पैसे के लिहाज से, या इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशराइज जो कराया था उसके बारे में बात हो रही थी। और यहाँ से एक जो डिप्लोमेट है उनको کینیڈا سے فارغ کر دیا گیا. ہندوستان نے اس کے بارے میں جو اپنا بیان دیا تھا اس کے بارے میں, اور میں جو کینیڈا نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اس نے کہا تھا وی ہیو سین اینڈ ریجیکٹڈ دا اسٹیٹمنٹ آف کینیڈین پرائم منسٹر ان دیئر پارلیمنٹ ایز آلسو اسٹیٹمنٹ بائی دا فارن منسٹر. ایلیگیشنز دا گورنمنٹ آف انڈیاز انوالومنٹ ان ایکٹ آف وائلنس ان کینیڈا از ابسرڈ اینڈ موٹیویٹڈ. بالکل انہوں نے اس کی نفی کر دی تھی. سملر ایلیگیشنز ور میڈ بائی دا کینیڈین پرائم منسٹر ٹو آر پرائم منسٹر. جب پرائم منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی تھی تب بھی کینیڈین پرائم منسٹر نے, اسی لیے شاید وہ ملاقات 10 منٹ یا 10 منٹ سے کم دوران یہ دی, جو کہ ایک ریگولر روٹین کی ملاقات سے بھی نسبتاً کم ہوتی ہے. Such unsubstantiated allegations seek to shift the focus of Khalistani terrorist, matlab wo Khalistan walon ko, but kahan ki kal jab prime minister ne ye bayan diya tha unhone is bayan ko absurd qarar diya tha aur motivated bayan qarar diya tha aur unhone kaha tha isme qatan koi sachai nahi hai, qatan koi sachai nahi hai, aur Hindustan ne bilkul koi aisa nahi kiya. But aaj Hindustan ne کینیڈا کے ایک جو سینئر ڈپلومیٹ ہیں لیجیٹڈ فار ڈیٹ, انہوں نے ہندوستان سے وہاں سے فارغ کر دیا. یعنی پانچ, ایک سینئر سفارتکار جو کینیڈین سینئر سفارتکار اس وقت انگلینڈ انڈیا میں موجود ہے, ان کو 5 دن کے اندر ملک چھوڑنے کا کہا گیا. ہندوستان کی سرکار نے کینیڈین امبیسڈر کو بلانے کے بعد ان کو کہا اس ڈپلومیٹ کو 5 دن کے اندر انڈیا کو چھوڑ دے. اب کینیڈا نے اگر یہ کیا تھا تو جس ڈپلومیٹ کو انہوں نے نکلنے کا کہا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ, انٹیلیجنس ایجنسی کے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو دیٹ از را, ٹھیک ہے. آج کینیڈا نے پیر کے روز کہا کہ اس کی سیکورٹی ایجنسی جون میں برٹش کولمبیا میں سکھ رہنما کے قتل اور بھارتی حکومت کے ایجنٹوں کے درمیان تعلق کے قابل اعتماد الزامات سے متعلق تحقیقات کر رہی ہیں. آج بھارت کی وزارت خارجہ نے کینیڈا کے جو سفیر ہیں یا ان کو طلب کیا ہے, ان کا کہا ہے آپ کا یہ جو ڈپلومیٹ ہے ان انڈیا, اس کو ہم 5 دن کے اندر ہندوستان کی سرزمین کو چھوڑ دیں. اب یہ ٹوٹل تضاد کر گیا. کل انڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, آج انڈیا کیا کہہ رہا ہے. دا ہائی کمیشن آف کینیڈا ٹو انڈیا واز سمن ٹوڈے, یہ انڈیا کی سائٹ سے ہم نے لیا. دا ہائی کمیشن آف کینیڈا ٹو انڈیا واز سمن ٹوڈے اینڈ انفارمڈ اباؤٹ دا ڈیسیژن آف دا گورنمنٹ آف انڈیا ٹو ایکسپیل, آئی وش کہ وی کین شو اٹ, to expel a senior Canadian diplomat based in India. The concerned diplomat has been asked to leave India within the next 5 days. The decision reflects government of India's growing concerns. Aur kya kijiyega? The decision reflects government of India's growing concern at the interference of Canadian diplomat. Ke jo Canadian diplomat hai na, usne Hindustan ke andaruni mamlaat mein mudakhalat ki hai. او میری جان کے ٹوٹو, پاکستان ساری عمر روتا رہا تھا ڈے کسی دے کان دے تو جون اسی رنگی ہوں لگیا نا پتا لگے گا حال اگے اگے پتا سوچی جاؤ دیکھی جاؤ. وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہمارے اندرونی معاملات میں کینیڈا تو بیچارہ بے ضرر جیا ملک ہے, اور حالانکہ اٹس ٹوٹل ڈفرنٹ, کل انہوں نے کچھ اور کہا تھا اور آج وہ کچھ. کینیڈا نے ان کے سفارتکار کو ملک بدر کیا اور آج انڈیا نے بھی ٹٹ فار ڈیٹ کر دیا. مگر صاحب دس از ناٹ دین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا. جب ترکی میں جمال خاشقجی کا قتل ہوا تھا وی اسپوک ایز لاؤڈلی ایز وی آر اسپیکنگ ناؤ. پاکستان میں اگر چند زیادتیاں ہو رہی ہیں تو ہم ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, اور ہم نے مختلف مواقع کے اوپر اس کنسرن کا اظہار کیا, جس میں اگر ہم یہ کہتے تھے کہ جو مس بلوچ کی اسیسینیشن یا مرڈر ہوا تھا اس میں بھی را انوالو تھی بیکاز شی واز کالڈ آؤٹ سائڈ. اب آئی ایس آئی کی بات سننے کے تو نہیں ہے, مس بلوچ نہیں گئی تھی. فیاض بلانا کی میموری بہت اچھی ہے, ہی از ہیئر ود می. مس بلوچ واز ہیئر ان ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو اور شی واز کالڈ آن لیک شور, اور اگر آئی ایس آئی کے بندے نے اس کو بلایا تھا شی واز ورکنگ اگینسٹ پاکستان, وائی وڈ شی ہیو وانٹ ٹو سی آئی ایس آئی. اور وہاں پہ اس کے بعد پھر اس کی 2 دن کے بعد اس کی لاش ملی تھی. استعمال کیا, استعمال کروا کے مروا دیا. سیم نیجر کی بات ہوئی اور مختلف ممالک میں اور بھی, وہ آج اگر پرائم منسٹر آف کینیڈا یہ بات کہتے ہیں اور کینیڈین فورسز, چاہے وہ آر سی ایم پی ہو چاہے ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, دے ڈونٹ اپنے ریزلٹس جو ہیں وہ ایگزمپشن کی گراؤنڈ کے اوپر نہیں کہتے, دے ڈو ریسرچ اینڈ اس میں سال ہا سال بھی لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اس کے پروفز شواہد حاصل کیے. ایک اور چیز جس کے شواہد حاصل کیے کہ آپ کو پتا ہوگا خالصتان کی اس تحریک کے بعد بے شمار مندروں کے بیچ میں چاکنگ کی گئی تھی جس میں نامناسب الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا, جس میں سکھ برادری کہتی تھی یا خالصتان سے متعلقہ لوگ کہ ہم میں سے تو کسی نے بھی نہیں کیا. بہرحال ویڈیو فوٹیج اس کی حاصل کی وغیرہ کی, مگر آج میرے پاس اس کی بھی پوری کی پوری رپورٹ آ گئی ہے کہ آر سی ایم پی نے جو اس پہ پروب کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دس از آلسو فالس فلیگ, کہ ان کے اپنے ہی بندے تھے جنہوں نے یہ کیا. میں کوٹ ان کوٹس میں اس کو شیئر بھی کہہ دیتی ہوں. لیٹ می ٹیک یو ٹو جناب فیاض بلانا صاحب, میرے ساتھ ہیں. فیاض بلانا صاحب السلام علیکم. سر
وعلیکم السلام, آپ کو بھی اور آپ کے تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم.
بہت شکریہ فیاض بلانا صاحب. یقیناً میں ہم نے اپنے ملک کو روتے رہنا ہے. کل جو پاکستان کے پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں امریکہ میں موجود ہیں, اور نیشنل جو ہے وہ جنرل کیا یونائٹیڈ نیشنز کی تقاریر کا سلسلہ بھی ہے, 22 کو پاکستان ریپرزینٹ بھی کر رہا ہے. مین وائل آج جو کینیڈا کی خبر نکل آئی ہے کہ کل سے جسٹن ٹروڈو صاحب نے جو کہا, تو would you mind to cover this کہ آج کینیڈا کے بعد انگلینڈ اور انگلینڈ کے بعد آسٹریلیا نے بھی اپنے کنسرن کا اظہار کیا اور ہوم سیکیورٹیز نے بھی اس کے بارے میں اپنی ریزرویشن کی, دس از میٹر آف گریٹ کنسرن, کہ اگر انڈیا یہ کر رہا ہے تو کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں.
بہت افسوسناک صورتحال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے G20 میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو گئے تھے تو وہاں کولڈ شولڈر دیا تھا انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے اور ان کی وزارت خارجہ نے,
اور انہوں نے بڑا ہائی لائٹ بھی کیا تھا اس کو.
جی ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی. اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا مسئلہ ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں انڈین نژاد شہری یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں اور کینیڈا کے شہری بن چکے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ انڈینز کو تو ڈوئل نیشنلٹی الاؤ بھی نہیں ہے, تو انہیں جب کینیڈا کی شہریت انہوں نے اپنانی ہوتی ہے انہیں اپنی انڈین شہریت سرنڈر کرنی پڑتی ہے, اور پھر انہیں ایک نان ریزیڈنٹ انڈینز کا ایک کارڈ ملتا ہے کہ یہ انڈین ہیں لیکن رہتے یہاں نہیں ہیں اور ان کی شہریت بھی نہیں ہے, تو وہ سارے اپنے حقوق اپنے پچھلے ہوم سے ختم کر کے اس کینیڈا کو اپنا وطن بناتے ہیں اور پھر یہاں رہتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں رہتے ہیں, اور مسلسل اسپیشلی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی تعداد یہاں ان کی آتی ہے, باقی پوری دنیا کے تو شاید اتنے اسٹوڈنٹس آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں, مین تو انڈیا سے ہی آتے ہیں. اتنے اچھے ریلیشنز, اتنی زیادہ ہم وہاں سے ہیومن ریسورس اور وہ لے کے آ رہے ہیں, ٹریڈ ریلیشنز ہیں کینیڈا کے اور انڈیا کے, اور ہمارے تقریباً 16 MPs جو ہیں وہ انڈین نژاد ہیں, یہاں ممبر پارلیمنٹ ہیں, ان میں سے 4 ٹروڈو صاحب نے اپنی کیبنٹ میں منسٹر رکھے ہوئے تھے. اب پھر انہوں نے پچھلے ہفتے جہاں انہوں نے 3 پاکستانی نژاد ممبران پارلیمنٹ کو پارلیمانی سیکرٹری بنایا ہے, 4 انڈین نژاد ممبران پارلیمنٹ کو انہوں نے اپنا پارلیمانی سیکرٹری بنایا ہے. اتنے اچھے تعلقات انڈیا اور کینیڈا کے تھے, تو پھر ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کو جب وہ 4 سال پہلے گئے انڈیا تو وہاں اس وقت بھی ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھا گیا جو تمام ڈپلومیٹک نارمز کے اگینسٹ تھا. اب G20 میں شرکت کرنے کے لیے وہ گئے تو اس وقت بھی انہیں کولڈ شولڈر دیا گیا اور انتہائی ان کے ساتھ برا سلوک رکھا گیا, حتیٰ کہ پریس کانفرنس کے دوران جو انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر, ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے تبصرہ کہا کہ میں ہندی میں تبصرہ کروں گا, الٹا چور کتوال کو ڈانٹے. یہ جب جے شنکر نے کہا تو میرے جیسے سننے والوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, ایکچولی وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے. آج پتا چلا کہ چور بھی انڈیا تھا اور ڈانٹ بھی وہ ہمیں رہا تھا. اور اب ہمارے پارلیمنٹ میں کل جب جسٹن ٹروڈو نے بتا دیا کہ میں نے یہ بات G20 میں اپنے اس وزٹ کے دوران انڈین پرائم منسٹر کو بتا دی تھی کہ ہماری RCMP کی تحقیقات کے مطابق, اور آپ کو پتا ہے RCMP از ون آف دی بیسٹ انویسٹیگیشن ایجنسی, ہماری رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس, ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق 18 جون کو اس سال جو سرے میں, سرے ایک 30 کلومیٹر ایسٹ پہ ایک سٹی ہے ہمارے برٹش کولمبیا وینکوور سے, اس سرے میں جس میں اکثریت انڈین نژاد لوگوں کی ہے اور اس میں زیادہ ہمارے سکھ برادری کے لوگ ہیں, وہاں گرودوارا صاحب گرو نانک گرودوارا گرو نانک صاحب کے باہر ان کی پارکنگ لاٹ میں दो नामालूम अफराद ने, वह नकाब पोश थे, उन्होंने गोलियों के वार गोलियां उन पर सीधे फायर किए और हरदीप सिंह नजर को वहां उन्होंने कत्ल कर दिया। और उसकी तहकीकात 18 जून से जारी थी, अब जून जुलाई अगस्त अगस्त में जाके तहकीकात मुकम्मल हो चुकी थी। फेडरल गवर्नमेंट को आरसीएमपी ने रिपोर्ट कर दिया था कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन ऑफिशियल्स जो यहाँ इंडियन हाई कमीशन ऑटवा में तैनात हैं, और वो पूरे ज़ाहिर उनके कौंसलेट हैं, वैंकूवर में भी है, टोरंटो में भी है, जगह जगह उनके कौंसलेट हैं, तो वो उनके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, हत्ता के क्लियरली कल हमारी वजीर खारजा जो है मिस मेलनी, उन्होंने बता दिया कि वो राय पवन कुमार राय जो सीनियर सफारतकार हैं, यहाँ डिप्लोमेट थे, इंडियन हाई कमीशन में जॉब कर रहे थे, वो रा के इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है रा, उसके हेड थे कनाडा में, और वो इस सारे मामले में मुलव्वस थे, और उन्हें कनाडा छोड़ने का, उन्हें पर्सना नॉन ग्राटा, नापसंदीदा शख्सियत करार दे के उन्हें कनाडा छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है, और उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो मुलव्वस हैं, क्योंकि उन्हें डिप्लोमेटिक कवर हासिल है, इसलिए उनके राइट अवे उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता, लेकिन होगा, केस होगा भी और आगे चलेगा भी, क्योंकि आरसीएमपी इस तरह हवा में एक तीर नहीं चलाती। आरसीएमपी के पास पूरे प्रूफ हैं, और इसके इससे पहले आपको पता होगा कि ये जो सिख भाई थे हरदीप सिंह नजर, ये यहाँ खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ थे, और ये उस गुरुद्वारा साहब जो टेम्पल था उसके प्रेजिडेंट भी रहे हैं, और उन पे इंडियन गवर्नमेंट ने $12,000 का इनामी रकम उनकी लगाई हुई थी, उनके सर की कीमत लगाई हुई थी। जब इंडियन गवर्नमेंट ने हरदीप सिंह नजर पे कीमत लगाई हुई थी, और फिर यहाँ रा एक्टिव भी थी, हमारी गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, हमारी गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि रा के हेड थे पवन कुमार राय, और उन्हें कनाडा छोड़ का हुक्म भी दे दिया गया है। तो ये सारे सबूत मिल मिला के उस तरफ इशारा करते हैं कि जो सलूक हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ रखा गया, रवा रखा गया, ये वजह थी। और वो जो जय शंकर कह रहे थे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो बेसिकली ये फिकरा, ये मुहावरा, ये टांट जो उन्होंने की थी, ये आज उनके अपने ऊपर फिट हो गई है कि चोर भी वही हैं और वो डांट हमें रहे हैं, क्योंकि प्रूफ तो जस्टिन ट्रूडो ने दिए थे नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी वजीर खारजा ने, इन्होंने ये पब्लिक करने से पहले यहाँ हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं पोलिवर और एनडीपी के जो हेड हैं अपना जगमीत सिंह, उनको एतमाद में लिया, उन्हें बताया कि ये हो रहा है और हम ये इसे अनाउंस करने लगे हैं, ये हमारे साथ हो रहा है, यहाँ हमारी सरजमीन में हमारे शहरी महफूज नहीं है, और इंडिया यहाँ हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, और ये किसी सूरत कबूल नहीं है कि हमारे शहरियों को यहाँ अदम तहफ़ हम तो अपने लोगों को मैक्सिमम दुनिया भर में कहीं भी कैनेडियन शहरी हों हम उन्हें तहफ़ फराहम करते हैं, और हमारी सरजमीन पे आके अगर इंडियन रा एजेंसी ने इस तरह काम करना है तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मेरे ख्याल में ये बात आगे बढ़ेगी और हमारी पूरी कैनेडा की जो आपको पता है ये डाइवर्स कम्युनिटी है और पूरा कैनेडा इस वक्त यूनाइटेड है, और यही नहीं किया हमारे वज़ीरे आज़म ने, जस्टिन ट्रूडो ने हमारी अपोजिशन को एतमाद में लेने से पहले अमेरिका से बात की है, बरतानिया से बात की है, और अभी जिस तरह आप बता रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने भी इस पर बात उठाई है, तो यकीनन जितने हमारे वर्ल्ड वाइड इतिहादी हैं और जो समझते हैं कि कैनेडा इज वन ऑफ दी एक पुरमन शहरी हैं और पुरमन अमन पसंद मुल्क है, यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है कि इंडियन अपने मामलात यहाँ हमारी सरजमीन पे आके निपटाए। और अगर खालिस्तान तहरीक वाले लोग कहते भी हैं और अगर वो रिफरेंडम करा भी रहे थे, स्पेशली अभी G20 का जब विजिट हो रहा था उसी दिन वहां वैंकूवर में रेफरेंडम हुआ और 135,000 सिख भाइयों और बहनों ने बाहर निकल के लाइन में लग के वहां जहां 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 जिस गुरुद्वारा में जो जो उनके पोलिंग स्टेशन थे उन्होंने अपने राय का इजहार किया और 135,000 लोगों ने उस रेफरेंडम में हिस्सा लिया। इसी तरह इससे पहले ये रेफरेंडम का सिलसिला यहां से शुरू नहीं हुआ कैनेडा से, ये स्टार्ट हुआ था इटली से। सबसे पहले उन्होंने रेफरेंडम इटली में कराया, फिर स्पेन में कराया, फिर इंग्लैंड में कराया, फिर स्विट्जरलैंड में कराया, फिर अमेरिका में कराया, फिर कैनेडा में कराया, और अब वो अगले साल अप्रैल मई में वो इंडिया में भी कराने जा रहे हैं। और इससे पहले जो इनके सिख फॉर जस्टिस के लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने एक दफा हमें यहाँ ई आवाज टेलीविजन पर इंटरव्यू देते हुए कहा था कि कनाडा की तरफ इंडिया क्यों उंगली उठाता है, इंडिया ने अगर बात करनी है तो हमसे करे, सिख फॉर जस्टिस तंजीम, मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूं, मैं चलाता हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं लॉयर हूं, मैं उनके सारे केसेस लड़ता हूं, और अभी ये हरदीप सिंह नजर के लॉयर भी गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, और उन्होंने कहा था कि अगर इन्हें कोई इतराज है तो अमरीका से बात करे और अमरीका से पूछे कि सिख फॉर जस्टिस न्यूयॉर्क से किस तरह ऑपरेट कर रही है। जी
बहुत शुक्रिया। और अगर आप याद करें तो सर, ये टोरंटो स्टार ने इंडिया के कनाडा के इलेक्शन के हवाले से भी, टोरंटो स्टार में आर्टिकल था, इंडिया अमंग टॉप एक्टर्स फॉर द फॉरेन इंटरफेरेंस इन कैनेडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और ये आर्टिकल छपा था मंडे जून 5, 2023 को ये आर्टिकल छपा था। आपको याद है फयाज बिलाना साहब?
नहीं, मुझे उस आर्टिकल नहीं याद, लेकिन उससे पहले आप जो करीमा बलोच की बात कर रही थी,
या
करीमा बलोच के अपने फैमिली इश्यूज थे, और करीमा बलोच को जिस तरह आप किसी ने फोन करके उन्हें बुलाया और उन पे शर्त ये लगाई कि आप फोन घर रख के आए, वो वहां से नॉर्थ यॉर्क के एरिया में कहीं थी, 401 और जो दूसरा यॉर्क बुलेवार्ड है, वहां से वो ट्रेन में बैठी, बस में बैठी, फिर ट्रेन में बैठी और लेक शोर डाउन टाउन टोरंटो लेक शोर तक आई, और उसका इस दौरान उनका किसी से रब्ता नहीं था। जिस तरह आप कह रही हैं कि वो कहते हैं कि उन्हें बुलाया गया,
लेकिन $8,000
उनका उस अपार्टमेंट का एक्सपेंस था मंथली, तो वो एक्सपेंस कौन बियर कर रहा था? उनके हस्बैंड तो वो भी पाकिस्तान से भागे हुए थे और वो यूके में होते थे और उनके अपने हस्बैंड से डिस्प्यूट चल रहे थे।
सही
जी।
और दूसरी बात ये कि ये नॉर्मल शख्स नहीं,